ये 16 साल का एरिक अल्मांडिंगा है जो अपनी दादी और पिता के साथ अलास्का के पामा में पामा पोस्ट के इंटरव्यू रूम में है। एरिक को उसकी सीट पर ले जाया जा रहा है ताकि उसके एक दोस्त डेविड ग्रुनवाल्ड के लापता होने के बारे में पूछताछ की जा सके। एरिक को इस बात की जानकारी नहीं है कि पूछताछ करने वाले के पास एरिक को दोषी ठहराने के लिए जरूरी सारी जानकारी पहले से ही है। दरअसल पूछताछ से ठीक पहले उसने एरिक की दादी और पिता को इस बारे में समझाने में करीब 35 मिनट लगाए थे। फिर भी उसने पूछताछ के शुरुआती दौर में ही एरिक को ये जानकारी नहीं देने का फैसला किया। हालांकि इस पूछताछ को दोबारा देखने से पहले हमें करीब एक महीने पहले की घटना पर गौर करना होगा। 13 नवंबर 2016 को 16 साल का डेविड ग्रुनवाल्ड रविवार की दोपहर अपनी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के साथ घूम रहा था। वे दोनों घर में आराम कर रहे थे और अपने हाई स्कूल के होमवर्क पर थोड़ा ध्यान दे रहे थे। शाम के 6 बजे के करीब डिनर के बाद डेविड ग्रुनवाल्ड अपनी माँ के पास गया और कहा कि वो विक्टोरिया को घर छोड़ने जा रहा है। माँ ने जवाब दिया, ठीक है, बस ये सुनिश्चित करना कि तुम रात 9 बजे से पहले घर आ जाओ। फिर दोनों सड़क पर निकल पड़े और डेविड ने विक्टोरिया को घर छोड़ दिया। डेविड ने फिर अचानक अपनी माँ को फोन किया। उसने कहा कि स्कूल के कुछ लोग उसके दोस्त एरिक के घर पर हैं और वो घर जाते समय वहां रुकना चाहता था, इसलिए वो उम्मीद कर रहा था कि उसे देर हो जाए। उसकी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं और वो आधे घंटे और ले सकता है और 9:30 बजे तक घर आ सकता है। रात के 10 बज गए और डेविड कहीं नहीं दिखा। उसकी माँ ने उसे फोन और मैसेज करना शुरू किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए उसने उसकी गर्लफ्रेंड को फोन किया। विक्टोरिया ने फोन उठाया और पुष्टि की कि डेविड ने उसे 7 बजे से पहले छोड़ दिया था और फिर वो वहां से घर जा रहा था। डेविड की माँ को पता था कि वो किस दोस्त के घर जा रहा है, इसलिए उसने उसके दोस्त एरिक को फोन लगाने की कोशिश की। एरिक ने फोन उठाया लेकिन उसने बताया कि उसने डेविड को उस शाम देखा ही नहीं था, इसलिए उसकी चिंताएं बढ़ती गईं और डेविड को ढूंढने के लिए खुद कई घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद उसने पुलिस से संपर्क करने का फैसला किया। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और शहर की आबादी 8,000 से भी कम होने के कारण कानून प्रवर्तन ने तुरंत जांच शुरू कर दी। कानून प्रवर्तन ने डेविड की तस्वीरें जारी की और स्थानीय समाचारों में उसके लापता होने की बात कही और जनता से उसे खोजने में मदद करने को कहा, और डेविड के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के ठीक 16 घंटे बाद एक खोजबीन हुई।
डेविड की गाड़ी कल दोपहर वासिला में एक कच्ची सड़क पर मिली। अब वो जलकर राख हो चुकी थी लेकिन डेविड अंदर नहीं था और उसके घर पर उसकी माँ को यकीन था कि कोई जानता है कि वो कहाँ है। डेविड मात्सु करियर और टेक हाई स्कूल का छात्र है। उसकी माँ का कहना है कि वो रविवार की रात घर पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ाई कर रहा था। वो उसे घर ले जाने के लिए निकला और उसकी माँ ने उसे आखिरी बार देखा उस रात करीब 11:30 बजे। उसने पुलिस को फोन किया और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने कल सुबह पामा वासिला हाईवे पर उसके फोन पर संपर्क किया लेकिन उसकी माँ का कहना है कि रविवार रात से कोई कॉल या टेक्स्ट नहीं भेजा गया है। उसके डेबिट कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। सोमवार दोपहर डेविड की कार चर्च रोड के पास एक रास्ते पर छोड़ी और जली हुई मिली। उसकी माँ का कहना है कि यह सब उसके बेटे के स्वभाव के बिल्कुल उलट है। हमें नहीं पता कि वो कहाँ है, उसकी क्या हालत है, वो कहाँ है, क्या वो कहीं गिर गया है, उसे चोट लगी है या
किसी ने उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं रखा है, हमें कुछ भी पता नहीं है। और जैसे जैसे समय बीतता गया यह मुश्किल होता गया। डेविड की फोर्ड ब्रोंको एक सुनसान जगह पर जली हुई और छोड़ी हुई मिली जो उसकी गर्लफ्रेंड विक्टोरिया के घर से लगभग 20 मीटर दूर जंगल में छिपी हुई थी। जिस तरह से गाड़ी मिली थी उससे कुछ ही देर में किसी गड़बड़ की आशंका जताई जाने लगी। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई डेविड के जिंदा मिलने की उम्मीदें भी कम होती गईं। डेविड की फोर्ड ब्रोंको मिलने के ठीक 3 हफ्ते बाद 2 दिसंबर को पुलिस को एक और खौफनाक खुलासा हुआ। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने उसकी तलाश की और मेरे साथ रहे। वो एक बेहतरीन इंसान था और वो हमेशा मेरे दिल में रहेगा। डेविड ग्रुनवाल्ड के शव शहर से 1/2 घंटे से भी कम दूरी पर बर्फ में जमे हुए पाए गए। उसके शव की तुरंत जांच की गई और मौत की वजह सिर और गर्दन पर लगातार चोट लगना और उसके सिर पर गोली लगना बताया गया। अगले दिन 3 दिसंबर 2016 को पुलिस ने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने इस मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। वो संदिग्ध एरिक अलमंडिंगर है। जैसा कि पता चला, जांचकर्ता मामले की शुरुआत से ही एरिक पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और चूंकि एरिक ही वो दोस्त था जिससे डेविड ने उस रात मिलने का दावा किया था, तो ये तार्किक ही लगा। जांचकर्ताओं ने शहर के पास के हाईवे की जाँच की और किसी भी संभावित सुराग का पता लगाया, लेकिन सब कुछ एरिक की तरफ ही इशारा कर रहा था। इसके अलावा एरिक बहुत अजीब हरकतें कर रहा था। उसने डेविड को हफ्तों तक देखने से इनकार किया, कई इंटरव्यू से बचता रहा और अपने एक दोस्त को खोने का कोई गम भी नहीं जताया। इसके बावजूद एरिक ने पुष्टि की कि डेविड उस रात उसके घर रुका था। हालांकि एरिक ने कहा कि उसने डेविड को नहीं देखा और डेविड बस एक दोस्त को छोड़कर चला गया। ऐसा लगता है कि एरिक फिर एक कैब में बैठकर एनकोरेज गया। वहां पहुंचने के लिए 43 मील का सफर तय किया और फिर पूरी रात पार्टी करता रहा। आप जानते हैं, हमें इस मामले को पहले ही संभालना होगा, इससे पहले कि ये हत्या साबित हो जाए। हमें इसे ऐसे ही संभालना होगा जैसे कि ये हत्या हो, और मैं यही चाहूंगा कि डेविड आकर कहे, अरे दोस्तों, ओह जेके, मैं बस ओह तुम जानते हो, मैं उस रात कुछ दिनों के लिए था। क्या तुम्हें याद है वह एरिक घर से बाहर गया था? उद्धरण चिन्ह
नहीं।
ठीक है, मैं बाहर कहां खड़ा था? सीधे शब्दों में कहें तो एरिक की कहानी में बिल्कुल भी दम नहीं था, और वो बेहद संदिग्ध हरकतें कर रहा था। जांचकर्ता उसके साथ अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि कहीं न कहीं उसे संदिग्ध के रूप में निर्दोष साबित किया जाएगा, लेकिन चीजें उसके खिलाफ ही बढ़ती जा रही थी और बदतर होती जा रही थी। उन्होंने एरिक की सबसे हालिया कहानी की पुष्टि करने की कोशिश की, जिसमें एरिक की अकेली पार्टी ट्रिप में उसके दोस्त को छोड़ा गया था, लेकिन ये फिर से असंभव साबित हुआ। इसलिए जांचकर्ताओं के लिए अगला कदम एरिक के सामान के लिए तलाशी वारंट का अनुरोध करना था। जब वारंट स्वीकृत हो गया, तो अधिकारियों ने तुरंत एरिक के घर से कई सामान जब्त कर लिए, जिसमें एक टैबलेट भी शामिल था। इस टैबलेट पर खोजबीन की गई और फोरेंसिक टीम ने 13 नवंबर की रात को टैबलेट की गतिविधियों का GPS इतिहास प्राप्त किया। इन गतिविधियों से संकेत मिलता है कि एरिक डेविड के वाहन और उसके अवशेषों से संबंधित स्थानों पर आया जाया था, और इसलिए अब दबाव एरिक एलमंडिंगर पर था। अधिकारियों ने तुरंत एरिक एलमंडिंगर को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए ले गए। इससे पहले कि हम बहुत आगे बढ़ें, हमें बस एक बात स्पष्ट करनी है कि आपके अधिकार क्या है। क्या आप इनमें से प्रत्येक अधिकार को समझते हैं जैसा कि मैं समझता हूं? नहीं सर। इन अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, क्या आप डेविड के लापता होने में अपनी संलिप्तता के बारे में हमसे बात करना चाहेंगे? अच्छा,
ये खत्म हो गया। ठीक है, मैंने अभी अभी अपने ट्रेलर के अंदर की तस्वीरें देखी। आप लोगों ने हर जगह फैले खून के छींटों को साफ करने में वाकई बहुत घटिया काम किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, हम सभी को इतनी देर से लाइन में लगना बहुत मुश्किल हो गया है। अब उस समय डीए ने कहा था कि अगर तुम सहयोग करोगे तो तुम्हारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। इसलिए अगर तुमने ट्रिगर नहीं दबाया तो हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर तुम बस खड़े रहे तो हमें इसकी जरूरत है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा इसमें शामिल होगा। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों उसके पास ऐसा क्या था जो तुम चाहते थे। कोई मैंने ऐसा
नहीं कहा। मैंने बस इतना कहा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। वह
तुम्हारे साथ क्यों नहीं जुड़ना चाहता? लेकिन उसने वाकई ऐसा किया। एरिक, तुम्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। अब बहुत हो गया। तुम खुद को बाकी सभी से ज्यादा होशियार समझते हो। तुम हार चुके हो। अब मौका तुम्हारे सामने है कि तुम इस मौके का फायदा उठाओ, अपनी जिम्मेदारी लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम 16 साल के हो, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तस्वीर देखने के बाद मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरा रग रन चला गया है, क्योंकि तुम्हें उससे छुटकारा पाना था। मेरा हरा एक्सटेंशन कॉर्ड वही है क्योंकि तुमने डेविड के चारों ओर इसे बांधने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। हरे रंग का एक्सटेंशन कॉर्ड सबसे ज्यादा सही है। तो फिर जब मैंने इसके बारे में पूछा तो तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम कहाँ हो?
मैं कहाँ हूँ? अच्छा, ये केवल आंशिक रूप से सच है। तुमने शुरुआत से ही क्यों शुरू किया?
मैंने तुमसे शुरुआत की और वो पहले से ही जानता है कि तुम क्या करते हो।
ठीक है, यही तुम गलत हो। एरिक, सिंडी, सिंडी, जब ये हुआ तुम घर पर थी जब डेविड पिछले दरवाजे से अंदर आया। तुम उसके साथ पहले भी थी?
नहीं, डेविड यूं ही चलकर कैसे आ सकता है? मुझे बाहर होना होगा और वह यूं ही चलकर आ जाएगा।
एरिक अल्मंडिंगर इस पूछताछ के एक बड़े हिस्से के दौरान किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करता रहा। हालांकि पूरी बातचीत के दौरान एरिक ने खुद को ऐसे सबूतों से घिरा पाया जो उसके दावों के विपरीत थे, जिससे उसने कई बार अपनी कहानी बदली और आखिरकार एरिक यहां टूट गया।
देखो, अगर तुम कर सकते हो तो तुम्हारा क्या है और तुम्हारा सेल नंबर क्या है?
तुम्हें मिल गया है।
सच बताओ। ठीक है।
और फिर तुम?
बस अपने उस घटिया रवैये को निगल जाओ और अब अपना ख्याल रखना शुरू कर दो।
यह अच्छी सलाह है।
तुम जानते हो कि हम तुमसे प्यार करते हैं।
यह अच्छी सलाह है एरिक, ये तभी अच्छी है जब तुम इसे मानो। भाई सही, अच्छी सलाह तभी अच्छी होती है जब तुम उसे मानो।
तुम जानते हो कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो चलो। उस रात क्या हुआ था? तुमने उस बच्चे को गोली मारने का बहादुरी भरा फैसला किया। तुम्हें कहना होगा।
हाँ, ये बुरा होने वाला है, लेकिन चलो इसे एक साथ पार करते हैं। दुर्भाग्य से इस पूछताछ के दौरान ऑडियो की गुणवत्ता यहाँ से और खराब होती जाती है, इसलिए मैं एरिक के दावों को संक्षेप में बताने की पूरी कोशिश करने जा रहा हूँ। यह एरिक की कहानी है। 13 नवंबर को डेविड ने शाम 7 बजे के बाद एरिक को फोन किया कि वो क्या कर रहा है। एरिक ने उसे बताया कि वो पार्टी कर रहा था और उसका एक दोस्त भी आया हुआ था, इसलिए डेविड कॉल के तुरंत बाद आया। डेविड, एरिक और एक और दोस्त डोमिनिक जॉनसन एरिक के घर के पीछे एक पुरानी गाड़ी में घूमने लगे। ऐसा लग रहा था कि वे सब गांजा पी रहे थे और शराब पी रहे थे। डेविड ने शराब पीने से मना कर दिया क्योंकि उसे रात के 9 बजे तक घर जाना था। डेविड ने फिर गांजा रखने के लिए कुछ किया और उसे पी गया, जिससे एरिक और डोम बहुत नाराज हो गए। यहीं से बात हाथापाई पर आ गई। ऐसा लग रहा था कि गांजा को लेकर बहस के बाद डोम और एरिक ने बंदूक निकाली और डेविड के सिर पर वार करने लगे। डेविड जमीन पर गिर गया और फिर से पिटाई शुरू हो गई। फिर दोनों ने डेविड को उठाया, जिसके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था और वह बेहोश हो रहा था। फिर उन्होंने गाड़ी पर कब्जा कर लिया और शहर से बाहर एक घने जंगल वाले इलाके में गाड़ी लेकर चले गए। गाड़ी चलाते हुए डेविड ने पूछा, क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? लेकिन उनमें से एक ने कहा, तुम आज रात घर नहीं जाओगे। इसके बाद उन्होंने गाड़ी पार्क की, डेविड को पीछे की सीट से उतारा, उसे जंगल में थोड़ी दूर तक ले गए और फिर डोमिनिक ने गोली चला दी। इसके बाद दोनों डेविड की गाड़ी के पास वापस गए, उसे पास ही एक दूसरी जगह ले गए, उसमें आग लगा दी और फिर 30 मिनट तक चलते रहे। इसके बाद वे कैब से एरिक के घर वापस आए। उन्होंने एरिक के कालीन को जलाकर और किसी भी सख्त सतह पर ब्लीच लगाकर घटनास्थल को साफ करने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने एक और दोस्त से संपर्क किया, जिसने उन्हें अपने बिना गर्म किए हुए शेड में रात बिताने की अनुमति दी। ये कहानी काफी उलझी हुई और शायद जानबूझकर बदली हुई थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यह संदिग्धों के हक में जा रही है न कि उनके खिलाफ। उदाहरण के लिए, एरिक अब कह रहा है कि यह अपराध बिना किसी पूर्व चिंतन के अचानक हुआ। वो डेविड पर ड्रग लेने का आरोप लगा रहा है और दावा कर रहा है कि डेविड ने असल में कुछ ऐसा चुराया था जो उसका नहीं था, जिसके कारण अचानक झगड़ा हुआ। और वो दावा कर रहा है कि उसने गोली नहीं चलाई, बल्कि ये डोमिनिक जॉनसन ने किया था। जांचकर्ताओं ने इस कहानी पर सवाल उठाए, लेकिन जवाबों की तलाश जारी रखी और ज्यादा गिरफ्तारियां होने में ज्यादा समय नहीं लगा।
आज हम डेविड ग्रुनवाल्ड की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए 5 किशोरों पर पहली नजर डालेंगे।
एरिक एलमंडिंगा, ब्रैडली रेनफ्रो, डोमिनिक जॉनसन और ऑस्टिन बैरेट पर हत्या और अपहरण के आरोप है। एलमंडिंगा, रेनफ्रो और जॉनसन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का भी आरोप है और डेविन पीटरसन पर सबूतों से छेड़छाड़ करने और अभियोजन में बाधा डालने का आरोप है। पूछताछ के बाद एरिक के खिलाफ आरोप तय होने के बाद जांचकर्ता उसके खिलाफ अपना मामला बनाते रहे। वे एरिक के पिता की संपत्ति की तलाशी लेते रहे, उस दिन एरिक की वास्तविक गतिविधियों को फिर से बनाने की कोशिश करते रहे और एरिक को या उससे भेजे गए किसी भी डिलीट किए गए फोन कॉल या संदेशों को फोरेंसिक रूप से रिकवर करते रहे। इस प्रक्रिया के दौरान एक ऐसी खोज हुई जिससे 3 और संदिग्धों की भूमिका सामने आए। यह एक ग्रुप चैट थी जिसमें हत्या के बारे में अश्लील बातें करने वाले संदेशों की एक श्रृंखला थी और साथ ही इस तरह की घिनौनी बातें भी थीं। 16 साल के प्रतिभाशाली लड़के के साथ एफ। देखिए, जब आप ऑप्स से ज्यादा होशियार होते हैं तो क्या होता है। ये लगभग साफ हो गया कि यह वास्तव में एक पूर्व नियोजित हत्या थी। ये तब सच हो गई जब डेविड को लगा कि वो अपने 4 दोस्तों के साथ एक पार्टी में जा रहा है और फिर उसके दोस्तों एरिक, ऑस्टिन, ब्रैडली और डोमिनिक ने उसे बेरहमी से पीटा, ले जाया गया और फिर जंगल में गोली मार दी। 5वें नए संदिग्ध डेविन पीटरसन पर तब आरोप लगाए गए जब ये स्पष्ट हो गया कि उसे हत्या की रात से ही जानकारी थी और उसने पुलिस से हर विवरण छिपाया। इसके बावजूद ये समूह बहुत स्पष्ट रूप से दुष्ट हत्यारे बदमाशों से बना था। उनके चरित्र का एक उदाहरण अदालत में समूह की पहली अदालत में पेशी के ठीक बाद सामने आया। ये ब्रैडली रेनफ्रो दुखी ग्रुनवाल्ड परिवार से कुछ करने के लिए कह रहा है। वाकई शानदार काम। यह एक और संदिग्ध है, ऑस्टिन बैरेट। ऑस्टिन ने हत्या से कुछ समय पहले यह वीडियो YouTube पर पोस्ट किया था। ताजी फ्रीस्टाइल, ताजी हवा, हमें परवाह नहीं है। यहाँ अलास्का में बहुत ठंड है, जैसे हमारे दिल हमारे ट्रकों में हो। क्या हमारे पास स्पोर्ट्स कार और ड्रिफ्टिंग गुरु भी है? जब आप हमारे बारे में सोचते हैं तो शायद आपने ज्यादा नहीं सोचा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम प्रसिद्धि और खेल के शौकीन हैं और आपकी महिलाएं देहाती जीवन जीती हैं। ठीक है, मैं इसे यहीं समाप्त करने जा रहा हूँ। बस इतना ही कहा। सितंबर 2017 में 4 और गिरफ्तारियों के लगभग 9 महीने बाद केस की देखरेख कर रहे जज ने फैसला सुनाया कि एरिक एलमंडिंगा पर अकेले और बाकी लोगों पर एक साथ मुकदमा चलाया जाए। बाद में इसे बदल दिया गया और उन सभी पर अलग अलग मुकदमा चलाया गया और 8 मई 2018 को एरिक एलमंडिंगा का मुकदमा शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने मजबूती से पक्ष रखा, जिसमें शामिल लगभग हर व्यक्ति की सटीक गतिविधियों को उनके व्यक्तिगत GPS इतिहास के अनुसार बताया गया। उन्होंने डेविड ग्रुनवाल्ड को लगी हर चोट के बारे में बताया और एक मेडिकल विशेषज्ञ से यह समझाने को कहा कि ये चोटें कैसे लगी। उन्होंने डेविड की हत्या के तुरंत बाद के दिनों की कई तस्वीरें भी ढूंढ निकाली, जिसमें 5 संदिग्ध पार्टी कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो, जिससे साफ पता चलता है कि उनमें कोई अपराध बोध नहीं है। एरिक के बचाव पक्ष ने एरिक को इस तरह पेश करने की कोशिश की जैसे वह भी उस रात का शिकार था। उसने कहा कि वो चैट का हिस्सा जरूर था और इस पर मजाक कर रहा था, लेकिन उसने ट्रिगर नहीं दबाया था और वो जो कुछ भी देख रहा था उसके कारण भावनात्मक रूप से परेशान था। ये वास्तव में अजीब है, ये देखते हुए कि पूछताछ के आखिरी हिस्से में वो किस तरह से नाटक का हिस्सा बनने का आनंद ले रहा था। नहीं, वो उसे धक्का देता है और वो अभी भी खड़ा है और उसे हमारी ओर घुमाता है और जैसे ही वो एंड्रू की ओर देखता है तभी गोली चल जाती है और वो कुछ नहीं करता, बस अपने पैर छोड़ देता है और हार मान लेता है। उसका सिर उसके शरीर से पहले जमीन पर गिरता है। एरिक के सभी साथियों ने कहा कि एरिक अकेला बंदूकधारी था जो तार खींच रहा था और हर कदम का संचालन कर रहा था, और एरिक और डोमिनिक दोनों को अंततः प्रथम और द्वितीय श्रेणी की हत्या, हत्या, अपहरण, सबूतों से छेड़छाड़, वाहन चोरी और आगजनी का दोषी पाया गया। ब्रैड रेनफ्रो के मुकदमे के दौरान ब्रैड ने गवाही देने का फैसला किया। उसने दावा किया कि वह वहां था, लेकिन डेविड की पिटाई या गोली मारने में उसका कोई हाथ नहीं था। वह एरिक और डोमिनिक को रोक नहीं सका, इसलिए वो बस उनके साथ हो गया। शाम को उसकी हर हरकत एरिक के जैसी ही थी, बस उसने साफ कर दिया कि डेविड की हत्या की योजना अचानक तब बनी जब डेविड बाथरूम में था। इन सबके बाद एरिक एलमंडिंगा और डोमिनिक जॉनसन को 99 साल की सजा सुनाई गई। ब्रैडली रेनफ्रो उर्फ मिस्टर डू समथिंग को 105 साल की सबसे बड़ी सजा मिली, हालांकि उनमें से 30 साल निलंबित कर दिए गए। भयानक रैपर ऑस्टिन बैरेट ने दोषी मानने का फैसला किया और उसे 45 साल की सजा मिली। डेविन पीटरसन को सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में 6 साल की सजा मिली।